ಓಂ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಯೋಗ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹಾರಾಮಾಯಣ ನಿರ್ವಾಣ ಪ್ರಕರಣ ಸರ್ಗ 260. ರಾಮ್ಜಿನೆ ಪೂಛಾ, ಹೇ ಭಗವನ್, ಯಹ ಮೇನೆ ಜಾನಾ ಕಿ ಜಗತ್ ಅಕಾರಣ ಹೈ, ಜೈಸೆ ಸಂಕಲ್ಪ ನಗರ ಔರ್ ಸ್ವಪ್ನಪುರ ಹೋತಾ ಹೈ, वैसे ही यह जगत है, पर जो अकारण ही है तो अब यहाँ सब पदार्थ कारण से उपजते क्यों देख पड़ते हैं? कारण बिना तो नहीं होते, फिर ये क्यों भासित होते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ब्रह्म सत्ता सर्वात्म है, उसमें जैसे निश्चय होता है वैसा ही होकर दिखता है, पर क्या दिखता है? अपना अनुभव ही ऐसे होकर दिखता है, जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही नाना प्रकार के पदार्थ होकर दिखता है, परंतु उपजा कुछ नहीं। सब पदार्थ आकाश रूप है, वैसे ही यह जगत कुछ उपजा नहीं, कारण से रहित आकाश रूप है। हे राम जी, आदि सृष्टि अकारण हुई है, पीछे से सृष्टि में आभास रूप मन ने जैसा जैसा निश्चय किया है वैसा ही दिखता है, क्योंकि मन सर्वशक्ति रूप है। आदि सृष्टि जो उपस्थित है वह अकारण रूप है, पीछे से सृष्टि काल में कारण कार्य रूप हुए हैं, जैसे स्वप्न सृष्टि आदि कारण बिना होती है और पीछे से कारण कार्य दिखते हैं, पर वास्तव में ना कोई आकाश है, ना शून्य है, ना अशून्य है, ना सत्य है, ना असत्य है, ना असत्य सत्य के मध्य है, ना नित्य है, ना अनित्य है, ना परम है, ना अपरम है, ना शुद्ध है, ना अशुद्ध है, द्वैत कुछ नहीं, सब ब्रह्म है। हे राम जी, ज्ञानवान को सब शब्द और अर्थ ब्रह्म रूप भासित होते हैं, मुझको तो कारण कार्य भाव की कल्पना कुछ नहीं। जैसे सूर्य में अंधकार का अभाव है, वैसे ही ज्ञानवान के लिए कारण कार्य का अभाव है। जो सब आत्माएं हैं तो कारण या कार्य किसको कहिए? राम जी ने पूछा, हे भगवान, मैं ज्ञानी की बात पूछता हूं, उनको कारण कार्य भाव किस कारण नहीं भासित होता? जो कारण कार्य नहीं तो मृतिका और कुम्हार आदि द्वारा घट आदिक क्यों कर उत्पन्न होते देख पड़ते हैं? बताइए, ज्ञानवान को अकारण कैसे दिखता है और अज्ञानी को सकारण क्यों भासित होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ना कोई कारण है, ना कार्य है, और ना कोई अज्ञानी है। मैं तुमसे क्या कहूँ? जो ज्ञानवान पुरुष है उनके निश्चय में जगत की कोई कल्पना नहीं फुरती, उनके निश्चय में तो जगत है ही नहीं, तब ज्ञानी और अज्ञानी क्या? हे राम जी, आकाश में वृक्ष ही नहीं तो उसका वर्णन क्या कीजिए? जैसे हिमालय पर्वत में अग्नि का कण नहीं पाया जाता, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में जगत नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी, कारण और कार्य, ये शब्द जगत में होते हैं। पर जब जगत ही नहीं उपजा तो कारण कार्य, ज्ञानी और अज्ञानी, तुमसे क्या कहूँ। जैसे स्वप्न की सृष्टि सुषुप्ति में लीन हो जाती है और वहाँ शब्द और अर्थ कोई नहीं फुरता, वैसे ही ज्ञानवान के निश्चय में जगत ही नहीं फुरता। मुझको तो सब ब्रह्म ही भासित होता है, मुझको कुछ कहना नहीं। परंतु तुमने पूछा है, इसलिए अज्ञानी के निश्चय को अंगीकार करके कुछ कहता हूँ। हे राम जी, यह जगत अकारण और आभास मात्र है, किसी आरंभ और परिणाम से नहीं हुआ। जब पदार्थों का कारण विचारिए तो सबका अधिष्ठान ब्रह्म ही निकलता है। वह अद्वैत, अच्युत और सब इच्छाओं से रहित है, तब उसको कारण कैसे कहिए। इससे जाना जाता है कि जगत आभास मात्र है और कुछ वस्तु नहीं, आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अकारण होती है और उसमें अनेक पदार्थ दिखते हैं, पर उसका कारण विचारिए तो सबका अधिष्ठान अनुभव ही निकलता है। उसमें आरंभ और परिणाम कुछ नहीं हुआ, सृष्टि अनुभव रूप भासित होती है। जो पुरुष स्वप्न देख रहा है उसको स्वरूप के प्रमाद से कारण कार्य जगत और पुण्य पाप सब यथार्थ लगते हैं, वैसे ही यह जागृत जगत दिखता है। हे राम जी, आदि सृष्टि अकारण हुई है, पीछे सृष्टि काल में कारण कार्य रूप भासित होते हैं। जिसको अपना वास्तव स्वरूप स्मरण है उसको अकारण दिखती है, और जिस अज्ञानी को अपने वास्तव स्वरूप का प्रमाद है उसको कारण कार्य रूप सृष्टि भासित होती है। हे राम जी, वास्तव में एक ही अनुभव आत्मसत्ता है, परंतु जैसा जैसा अनुभव में संकल्प दृढ़ होता है उसी की सिद्धि होती है, और जिसका तीव्र संवेग होता है वही होकर दिखता है। इसमें कुछ संदेह नहीं कि कल्प वृक्ष के पदार्थ संकल्प की तीव्रता से प्रत्यक्ष होते हैं, तो उन्हें किसका कार्य कहिए। यदि जगत किसी कारण से उत्पन्न होता तो महाप्रलय में भी कुछ शेष रहता। जैसे अग्नि के पीछे राख रह जाती है, पर जगत के पीछे तो कुछ नहीं रहता। जैसे स्वप्न की सृष्टि जागने पर कुछ नहीं रहती, वैसे ही महाप्रलय में जगत का शेष कुछ नहीं रहता। इससे जाना जाता है कि यह जगत आभास मात्र है। जैसे ध्यान में ध्याता पुरुष किसी आकार को रचता है तो उसका कारण कोई नहीं होता, वह तो आकाश रूप है और अनुभव सत्ता ही फुरने से इस प्रकार होकर भासित होती है। आकार तो कोई नहीं, कारण बिना प्रकट हुआ है, ना कोई पृथ्वी है, ना कोई जल है, ना तेज है, ना वायु और आकाश, सब आकाश रूप है। परंतु संकल्प की दृढ़ता से पिंडाकार भासित होते हैं। हे राम जी, जब मनुष्य मर जाता है तब शरीर यहीं भस्म हो जाता है, फिर जीव परलोक में अपने साथ शरीर देखता है और उस शरीर से स्वर्ग नरक में सुख दुख भोगता है। सुख दुख भोगता तो उसका कारण कौन है? उसका कारण कोई नहीं पाया जाता, केवल चेतनता में संकल्प रूप वासना जो दृढ़ हुई है उसी के अनुसार शरीर भासित होता है और स्वर्ग नरक में दुख सुख भासित होते हैं, और तो कुछ वस्तु नहीं। सब पदार्थ संकल्प के रचे हुए हैं, वे सब आत्म रूप है। जैसे आकाश, व्योम और शून्य एक ही वस्तु के नाम है, वैसे ही कोई जगत कहो और कोई ब्रह्म कहो, इनमें भेद नहीं। फूरने का नाम जगत है और ना फूरने का नाम ब्रह्म है। जैसे वायु के चलने और ठहरने में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म को संवेदन के फूरने और ना फूरने में कुछ भेद नहीं। जो सम्यक दर्शी है उनको सब जगत ब्रह्म स्वरूप दिखता है। इस कारण दोष किसी में नहीं रहता, और जो बड़ा कष्ट प्राप्त होता है तो भी उन्हें खेद नहीं होता। जैसे कोई पुरुष स्वप्न में युद्ध करता है और उसको अपना जागृत स्वरूप स्मरण हो आता है तो वह स्वप्न को स्वप्न जानता हुआ युद्ध करता है तो भी दुख नहीं होता। वैसे ही जो पुरुष परम पद में जागा है उसकी सब क्रियाएं होती है, परंतु वह अपने को अक्रिय जानता है। हे राम जी, ज्ञानवान की सब चेष्टाएं होती है, परंतु उसके निश्चय में क्रिया का अभिमान नहीं होता। जैसे नट सब स्वांग भरता है, परंतु अपने को स्वांग से अलग और स्वांग की क्रिया को असत्य जानता है, क्योंकि उसको अपना स्वरूप स्मरण रहता है। वैसे ही ज्ञानवान सब क्रियाओं को असत्य जानता है। हे राम जी, ये सब पदार्थ अजात जात हैं, उपजे नहीं। जैसे स्वप्न में पदार्थ दिखते हैं परंतु उपजे नहीं, अपना अनुभव ही इस प्रकार दिखता है। वैसे ही यह जगत के पदार्थ भी अनुभव रूप जानो। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनाभुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।